हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बलवीर जी ने जैसे ही झलक को अंदर आते देखा, वे हैरान रह गए, क्योंकि जिस लड़की पर अभी कुछ देर पहले तक इल्जामों की बारिश हो रही थी, वही लड़की अब सिर ऊंचा करके उनके सामने खड़ी थी। वहीं अभय एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और झलक को देखकर बोला, आकांक्षा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई हो। अब तुम अपने मुंह से अपना सच बताओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम चाहकर भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, समझे तुम? ये सुनकर झलक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो सीधा कबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, फोन पर क्या कहा था तुमने? जैसे ही झलक ने ये कहा, कबीर थोड़े कन्फ्यूज अंदाज में उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह मेरे सामने आओगी तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। किसी एक मर्द के साथ सोकर और फिर खुद को सती सावित्री साबित करने की कोशिश कर रही हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझे तुम? और हाँ, फोन पर जो कहा था वही मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पर बोल रहा हूँ, तुम बदचलन हो। जैसे ही उसने ये कहा, झलक ने एक पल के लिए अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे खुद को संभाल रही हो, लेकिन अगले ही पल वो सीधे कबीर के गिरेबान पर झपटी और लगातार उसके मुंह पर 8 से 10 थप्पड़ जड़ दिए। कबीर बुरी तरह लड़खड़ा गया, उसके होंठ फट चुके थे, दांतों से खून निकलने लगा था, लेकिन झलक रुकी नहीं, वो लगातार उसे मारती जा रही थी। कुछ ही पलों में कबीर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और वो खून से लथपथ होकर सोफे पर गिर पड़ा। आदित्य तुरंत झलक के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, झलक क्या कर रही हो तुम, प्लीज रुक जाओ। लेकिन झलक ने उसकी एक नहीं सुनी, उसने पास रखा पानी का जग उठाया और पूरा का पूरा कबीर के ऊपर उड़ेल दिया, फिर एक बार उसे पकड़कर मारने लगी। तभी बलवीर जी गुस्से से चिल्लाए, लड़की ये क्या गुंडागर्दी है, एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से हमारे घर आकर हमारे बच्चे को मार रही हो, अभी तुम्हारे दादाजी को फोन करता हूँ। लेकिन तभी दिग्विजय जी, अनामिका, आरव और सौरभ वहां पहुंच गए। सामने का दृश्य देखकर वे सब हैरान रह गए। दादाजी तुरंत आगे बढ़े और बोले, झलक रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन झलक ने किसी की बात नहीं सुनी। तभी सौरभ जी आगे आए और झलक के कंधे पकड़कर बोले, शांत हो जाओ झलक, क्या किया है इसने, क्या कहा है इसने? झलक गुस्से से कांपती हुई कबीर की ओर इशारा करके बोली, इसने मुझे बदचलन कहा है। जैसे ही उसने ये शब्द दोहराए, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे हैरानी से जड़ हो गए। अनामिका, दादाजी, आरव और सौरभ सब समझ चुके थे कि इस वक्त झलक पर क्या बीत रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ कबीर को नहीं बल्कि अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को पीट रही हो। वातावरण ऐसा हो गया था जैसे अभी कुछ और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी अनामिका तेजी से आगे बढ़ी, वो कबीर को अपने पीछे करते हुए झलक के सामने आकर खड़ी हो गई। झलक जो लगातार वार कर रही थी, अनामिका को सामने देखकर रुक गई। अनामिका ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, शांत हो जाओ झलक, शांत हो जाओ, उसने किसी गलत फहमी में ये सब कहा है, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम सबका गुस्सा इस पर नहीं उतार सकती। वहीं आदित्य ऐसा खड़ा था जैसे पत्थर का बन गया हो, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसने तुरंत अभय की ओर देखा। अभय घबराया हुआ था लेकिन फिर भी बोला, देखो आकांक्षा, तुम भले ही लोगों को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारी गलती तुम्हारी है। तुम इतनी बड़ी चालबाज हो कि कोई सोच भी नहीं सकता, तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सुनते ही झलक की आंखों में फिर वही आग जल उठी। तभी बलवीर जी गुस्से से दिग्विजय जी की ओर मुड़े और बोले, दिग्विजय, ये क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी पोती को, मेरे बेटे ने सिर्फ सच बोला है और अभय के पास तो इसके गंदे फोटो तक हैं, क्यों नहीं दिखा रहा सबको, चुप क्यों खड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें अभय पर टिक गई थीं और झलक की सांसें तेज हो चुकी थीं, जैसे अगला पल पूरे सच को बाहर लाने वाला हो। अब जैसे ही एक बार फिर गुस्से में अभय ने उसी लहजे में झलक पर इल्जाम लगाए, झलक का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वो सीधा अभय के सामने जा खड़ी हुई और जिस तरह उसने कबीर की धुलाई की थी, उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से उसने अभय को मारना शुरू कर दिया। अभय पूरी तरह घबरा गया था, वो न तो झलक पर हाथ उठा पा रहा था और न ही पलटवार कर पा रहा था, क्योंकि झलक उसे संभलने तक का मौका नहीं दे रही थी। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिमाग सुन पड़ चुका था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। तभी अचानक आदित्य का धैर्य जवाब दे गया, वो तेजी से आगे बढ़ा और मारती हुई झलक का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बस करो मिस मल्होत्रा, बस करो, वो गरज कर बोला, इस तरह इन्हें मार के क्या साबित करना चाहती हो आप, अभय के पास जो सबूत है क्या उन्हें झुठला सकती हो तुम, बोलो, जवाब दो मुझे। ये सुनते ही अभय, जो पहले ही बुरी हालत में पहुंच चुका था, तुरंत कांपते हाथों से अपना फोन निकालने लगा। उसने झलक के सामने कुछ फोटो और वीडियो खोलकर दिखाने शुरू कर दिए। जैसे ही झलक ने वे फोटो और वीडियो देखे, उसके चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। अगले ही क्षण वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी ये हंसी कमरे में गूंज उठी। अनामिका, दिग्विजय जी, आरव, सौरव सबके चेहरे हैरानी से भर गए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पागल हो रहा था तो वो था आदित्य राणा। उसे झलक का ये रूप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ पल पहले वो आग बनकर सबको जला रही थी और अब अचानक हंस रही थी। आखिर चल क्या रहा है? आदित्य उसे समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे झलक को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी झलक ने गहरी नजरों से अभय को देखा और धीमे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में कहा, तुम जानते हो तुम अभी तक मेरे बारे में इतना गलत बोलने के बाद भी जिंदा क्यों हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ये वीडियो और फोटो है। तुम सिर्फ इन्हीं की वजह से जिंदा हो। ये कहकर उसने अभय का फोन उसके हाथ से छीन लिया और लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल गई। दिग्विजय जी और बाकी सभी लोग हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। बलवीर जी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर पर किसी ने भारी पत्थर दे मारा हो। वो तुरंत दिग्विजय जी की ओर मुड़े और बोले, ये सब क्या हो रहा है दिग्विजय? तेरी पोती मानसिक रूप से बीमार है क्या? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उन्हें सच में लग रहा था कि झलक के साथ कोई मानसिक परेशानी है। पहले उसने दोनों लड़कों की पिटाई की और फिर इतनी आसानी से हंसते हुए फोन लेकर चली गई। लेकिन झलक की मुस्कान देखकर दिग्विजय जी और अनामिका को कुछ और ही समझ आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर समझ चुके थे झलक के हाथ कोई बड़ा राज लग चुका है। झलक के बाहर निकलते ही वे लोग बिना बलवीर जी की बातों का जवाब दिए उसके पीछे पीछे चले गए। उधर बलवीर जी और आदित्य अभी भी शौक में खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि झलक आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। दादा पोता एक दूसरे की ओर बेचारगी से देखने लगे। वहीं कबीर और अभय के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। उनकी हालत देखकर तुरंत घर पर डॉक्टरों की टीम बुला ली गई। फैमिली डॉक्टर मिस्टर अग्रवाल ने आप ही कहा, ये क्या हुआ मिस्टर राणा, आपके बेटे को इतने जख्म कैसे लगे? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों ने मिलकर मारा हो इन्हें। डॉक्टर की बात सुनकर कबीर और अभय दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उधर आदित्य उनके चेहरे देखकर अचानक हंस पड़ा। आदित्य को हंसते देखकर बलवीर जी का गुस्सा और बढ़ गया।
ये क्या है, वो गरज कर बोले। एक तो खुद मुसीबत को अपने साथ लेकर आया और ऊपर से जब वो तेरे दोस्तों को और भाई को मार रही थी तब तूने उन्हें बचाना जरूरी नहीं समझा? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? सारी गलती उस लड़की की थी और वो फोन भी ले गई। आदित्य ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन तंज भरे लहजे में बोला, मुझे नहीं पता दादाजी गलती किसकी थी और किसकी नहीं, और मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना आपको। लेकिन आपने दोनों की शक्ल देखी है, एक लड़की से मार खाकर बैठे हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फिर आ गई। फिलहाल कमरे में मौजूद हर शख्स को अब ये समझ आ चुका था, ये मामला सिर्फ इज्जत या गुस्से का नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है।